From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by a combined choir of students from Brigham Young University.
Go ahead.
बनफल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण को जनता सेवा के रूप में पूर्ति की गई है। इस कार्यक्रम कोई भी अभिलेखन प्रतिलेखन या अन्य इस्तेमाल बिना मना है। प्रेसिडेंट एंड्रू बी आयरन गुजगर के प्रथम अध्यक्षता के पहले सलाहकार इस सभा का संचालन करेंगे। भाइयों और बहनों, हम इसी मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के 183rd वार्षिक महासम्मेलन के दूसरे बैठक में इस शाम तुम्हारा स्वागत करते हैं। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन, जो सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहा है, ने मुझसे कहा कि मैं इस सभा का संचालन करूं। हम उन सभी को स्वागत करते हैं जो उपस्थित हैं और जो दूरदर्शन रेडियो या इंटरनेट के मध्य यहाँ द्वारा भाग ले रहे हैं, और कई लोगों का जो दुनिया का भी भागों में स्थित केंद्रों में देख रहे हैं। हम उन महाअधिकारियों और महासहायक अध्यक्षताओं को आभार प्रकट करते हैं। ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के संगीत गायक मंडली द्वारा इस सभा का संगीत प्रदान किया जाएगा, जिसका निर्देशन रोनल्ड स्टेली और रोजलन हॉल करेगी। बॉनी गुडलेफ ओगन पर रहेगा। इस सभा की शुरुआत गायक मंडली इस गाने द्वारा शुरू करेगी, जीसस द वेरी थॉट ऑफ दी। प्रार्थना फिर ब्रदर रसल टी अस्तित्व द्वारा किया जाएगा। क्वायर फिर गाएंगे डिड यू थिंक टू प्रे।
Thank you. Our dear Father in heaven, we
Hare Ishwar Pita, hum yahan pe sab ikattha hue hain duniya bhar mein jo is conference ke liye ikattha hue hain. हम आभारी हैं सभी आशीष के लिए और धन्यवाद देते हैं जो प्यार हमें मिला है आपके और आपके बेटे के द्वारा और ताकि हम ये महसूस कर सके इस सेशन के द्वारा और अपनी ज़िंदगी में हम आभारी हैं जो ये गॉस्पल का पुनर्स्थापित के लिए फिर से सुसमाचार आ गया है हमारे साथ अभी एक जीवित प्रॉफिट है जिसके द्वारा से वो सभी कुछ कार्य हो सकता है जिसके द्वारा से सीलिंग हो सकता है परिवार के साथ हम प्रार्थना करते हैं सभी के साथ हो जो बात करें आज और हम सभी कुछ मिशनरी कार्य के लिए भी तैयार हो जाए और कार्य करने लगे यीशु मसीह के नाम से आमीन
President Dieter F. Uchtdorf will now present the
President
General
Dieter Uchtdorf. सत्तर को समर्थन कर मत प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद रॉबर्ट डब्ल्यू कैंटवेल गिरजाघर के ऑडिटिंग डिपार्टमेंट का प्रधान निर्देशन देगी उसके बाद ब्रदर भाई ब्रुक हेल्स जो प्रथम अध्यक्षता के सेक्रेटरी है जो गिरजाघर के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देंगे यह प्रस्तावित किया गया है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन जो यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का भविष्यवक्ता पैगंबर और प्रतिकार और प्रधान के रूप में समर्थन करें हेनरी बेनियन आयरिंग को प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार और डीटा फ्रेडरिक उगडोव को प्रथम सदस्यता के दूसरे सलाहकार से रूप में जो सहमति प्रकट करें जो असहमत है अगर कोई तो प्रकट करें प्रस्तावित किया जाता है कि हम बोएट केनेट पैकर को 12 देवतकों के परिषद के प्रधान के रूप में समर्थन करें और इन्हें परिषद के सदस्यों के रूप में बोएट के पैकर एल टॉम पेरी रसल एम नेल्सन डेलन एच ओक्स एम रसल बैलड रिचर्ड जी स्कॉट रॉबर्ट डी हेल्स जेफरी हार ऑलन डेविड ए बेडना क्विंटन एल कुक D. Todd Christofferson और Neil Anderson समर्थन करें जो असहमत है कृपया प्रकट करें जो असहमत है उसी तरह दिखलाए इस प्रस्तावित किया गया है कि हम प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों और 12 देवताओं के भविष्यवक्ताओं पैगंबर और प्रतिकारों के रूप में समर्थन करें जो सहमत है कृपया प्रकट करें जो असहमत है अगर कोई उसी तरह से प्रकट करें एल्डर वाल्टर एफ गंजालेस जो 70 के परिषद के अध्यक्षता के सदस्य थे से मुक्त किया गया है जो हमारे साथ में देने के लिए आभारी हैं उन्हें चाहते हैं कि प्रकट करें यह प्रस्तावित किया गया है कि हम एल्डर उलिसेस सोरेस को 70 के अध्यक्षता के सदस्य के समर्थन करें जो सहमत प्रकट करें जो असहमत अगर कोई प्रकट करें यह प्रस्तावित किया गया कि हम क्षेत्रीय सत्रों को मुक्त करें जो 2013 में फर्स्ट के लागू होगा रूबन बी अलियो जर्जियो एम अनाया नोलन डी आचिबाल्ड कार्लोस एल अस्टोर्गा हेक्टर हाविला एम एंथनी बर्न्स डेविड कबेरा मिल्टन कमागो रॉबर्ट ई चेम्बर्स Victor Ka, Kang Cheng, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Dubey, Matthew J. Eyring, Sinioni M. Finiangofo, Alfredo L. Jazati, James B. Gibson, Jovencio R. Guanjon, Mario A. Guerra, Luis S. Hernandez, Herman I. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Itunose, Douglas W. Jessup, Stephen Seeker, Johnny L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Malchin, Freebody A. Mansa, Benson E. Misalucha, Alberado Morales, W.T. David Murray, K. Brad Natris, S. Gifford Nelson, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickett, William F. Reynolds, Michael E. Roberts, Fernando A.R. De Rocha, Manfred Schutzer, Darren C. Smith, Ruben L. Spitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trito, Miguel R. Valdez, Arnulfo Venezuela, Carlos A. C. Valenova, Terence M. Vincent, Luis Woodman, Richard C. Zambrano, Join Barrio Sevas Kelie Hamare Sat आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा करते हैं, कृपया प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया गया है कि हम बहन इलेन एस डाल्टन, मैरी एन कुक, एन एम देव, जो जवान महिलाओं के महाअध्यक्षता के की है, को उसके महान सेवा के लिए धन्यवाद के मत दिए जाए मुक्त करने के साथ। उसी तरह हम जवान महिलाओं की महामंडल के सभी सदस्यों को भी मुक्त करते हैं। सभी हो हमारे साथ बहनों को उनके विशेष सेवा के लिए, भक्ति के लिए धन्यवाद का मत देना चाहते हैं, कृपया प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया गया है कि हम प्रथम 70 के परिषद के सदस्यों का समर्थन करें। एडवर्ड दुबे, एस गिफर्ड निल्सन, अर्नुफो वालेंसुएला, और 70 के दूसरे परिषद के सदस्यों के रूप में तिमोथी जे डाइक्स, रेंडी डी फंक, केविन एस हैमिल्टन, Adrian Ochoa, Terence M. Benson, जो समते प्रकट करें, कोई असमते उसी तरह से दिखाए। उसी नियुक्ति के दिखाते हुए एक सदस्य की तरह हम सेकंड काउंसलर के जनरल प्रेसिडेंसी के रिलीज करते हैं, जो धन्यवाद मत देना चाहते हैं तो कृपा करें। यह प्रस्तावित किया गया है कि हम क्षेत्रीय सत्रों को समर्थन करें। रूबन अकास्टा, फ्रेडरिक ओ अकिनबो, ओमार ए अल्वारेस, बेनेडिटो अंटुनेस, एलन सी बेट, ग्रैंड सी बेनेट, फर्नांडो ए काल्डरन, विल्सन बी काल्डरन, एच मार्सेलो कार्डोस, York Sang Cheng, Christopher Charles, Valerie B. Cardone, Paul C. Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo DeFeo, Marion D. Bide Antonio, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunningham, Jeffrey D. Erickson, X. Xavier Espinoza, Meliola M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Giddy, Jao R. Graal, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Liang, Axel H. Limer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquin J. Morera, Katsuyuki Otohara, Jose Pineda, Gary S. Price, Miguel R. Reyes, Gary R. B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzalduel Coyotol Salinas, Ciro Shamail, D. Zachary Smith, Michael L. Southwood, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfield, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Asake K. Tukuafufu, Jack A. Van Riemen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, or Hoi Sang Leonardo Hu, Joseph Mate, Kripya Prakat Kare. जो असहमत है अगर कोई प्रकट करे। यह प्रस्तावित किया गया है कि हम बार्नी ली ऑस्करसन जवान महिला के महाअध्यक्षता को साथ में कैरल लुइस फॉली मकंकी पहले सलाहकार का और एवलिन नील फुट मेरियट दूसरे सलाहकार की तरह समर्थन करें जो सहमत है कृपया प्रकट करें कोई असहमत है उसी तरह दिखलाए यह प्रस्तावित किया गया कि हम महाअधिकारियों क्षेत्र सत्रों और महा सहायक अध्यक्षताओं को समर्थन करें जैसे वर्तमान समय हो नियुक्ति है जो सहमत है कृपया करें जो असहमत है हो प्रकट करें धन्यवाद भाई और बहनों तुम्हारे समर्थन मत और तुम्हारे लगातार विश्वास और हमारे निमित्त प्रतन प्रार्थना के लिए हम नई नियुक्तियों हुए महाअध्यक्षों और जवान महिलाओं को महाअध्यक्षता को आगे आकर ऊपर अपना स्थान लेने के लिए आमंत्रित करते हैं
It's a long walk.
जिस तरह बतलाया गया है भाई कैंटवेल अब ऑडिट विवरण को पढ़ेगा उसके बाद भाई हेल्स आएंगे जो स्टैटिस्टिकल विवरण को पेश करेंगे यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का प्रथम अध्यक्षता के लिए प्रिय भाइयों डॉक्टर कवनेंस के भागहरण 20 में प्रतिकारण द्वारा निर्धारित किया गया है दसवां हिस्सा के बंटवारा के परिषद गिरजाघर के धन के खर्चा का अधिकार देता है यह परिषद में शामिल है पहले अध्यक्षता 70 का परिषद और बिशपरिक की अध्यक्षता यह परिषद गिरजाघर विभागों और परिचालों की अनुमति देता है गिरजाघर भाग धन का खर्चा स्वीकृति और दी हुई बजटन और गिरजाघर नियतों और कार्यवर्धन का अनुसार होता है गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग को अनुमति दी गई उसके पास सभी अभिलेख और प्रणालियन तक के पहुंच है गिरजाघर की समाप्तियों की सुरक्षा के नियंत्रण को पर्याप्त रूप से मूल्यांकन किया जाए गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग भगवान और कार्यवाली से स्वतंत्र है और उसकी सम्मति है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स और अन्य सिफारिश प्राप्त परमेश्वर जो ऑडिट हुआ उस पर आधारित गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग के यह विचार है कि 2012 वर्ष के सभी सामानों योगदान जो प्राप्त हुए जो खर्चे हुए और गिरजाघर के समाप्तियों को अभिलिखित किया गया है और उनकी देखभाल उचित अभ्यास स्वीकृति प्राप्त बजट और गिरजाघर नीतियों और कार्य विधियों के अनुसार की गई है श्रद्धा पूर्वक पेश किया गया है गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग रॉबर्ट डब्ल्यू कैंटवेल मैनेजिंग डायरेक्टर गिरजाघर के सदस्यों के जानकारी के बारे में प्रथम अध्यक्षता ने इस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट निकाला गया गिरजाघर के बढ़ती और पद पर December 31, 2012 तक लिए कुल मूल्यकार 3,005 स्टेक्स 347 मिशंस 591 जुलाई और 29,014 वर्ड्स ब्रांचेस थे गिरजाघर में कुल सदस्य 14,782,473 2012 में 122,273 नए बच्चों को नाम दर्ज हुए थे जिसमें से 272,333 धर्म पवित्र हुए थे 2012 के दौरान December 31 को 58,990 पूरे समय को प्रचारक और 22,961 गिरजाघर सेवा प्रदान करने वाले प्रचारक गिरजाघर पर में चार मंदिर Kansas Shahar, Missouri, Manassas, Brazil, Brigham Shahar, Utah, और Calgary, Alberta मंदिर. दो मंदिरों को फिर से समर्पण हुआ, Buenos Aires, Argentina, और Boise, Idaho मंदिर. सोल के अंत में जितने मंदिर जा रही थी वो 140.
We will now be pleased.
अब एल्डर्स रिचर्ड जी स्कॉट और क्विंटन एल कर्क जो बारह के परिषद की है को सुनेंगे. गायक मंडली और सभा अब खड़े होकर और गाएगी रिजॉइस द लॉर्ड इज किंग. उस संगीत के बाद एल्डर स्टेनली जी एलिस और जॉन बी डिक्सन जो 70 के है हमें भाषण देंगे. उनके बाद एल्डर डेविड ए बेडना जो बारह देवतों को के परिषद की है से सुनेंगे. दुनिया के कई जहां हम आज रहते हैं यह बतलाता है कि हम उस उत्सुकता से रहना चाहिए. यहां पर हमेशा कुछ है करने के लिए या ज्यादा हासिल करने के लिए. फिर भी हम सबके भीतर जरूरी है कि एक बचाने का स्थान हो जहां सुख और शांति हो, जहाँ हम आराम कर सके और अपने आप को आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार कर सकते हैं. सबसे अच्छा स्थान शांति के लिए हमारे घरों के चार दीवारी में होता है, जहाँ हम सभी कुछ किया है प्रभु यीशु मसीह के मुख्य स्थान देने में. कुछ घरों में पिता है जो घर पर रहता है और जो लायक पुरोहिती को रखने वाले हैं, और विश्वासी समर्पित माँ भी है जो सच्चाई के अगुवाई करते हैं. यहाँ पर कई तरह के गुरुवाली स्थितियों है. तुम्हारे परिस्थितियों को छोड़कर तुम अपने घर और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर केंद्र करो कि वो ही इस जीवन में शांति देने वाला है. तुम्हें जानना चाहिए कि जो निर्णय तुम बनाते हैं, चाहे सांसारिक या धार्मिक, वो उस पर निर्धारित हो जो उधारकर्ता हमें चाहता है कि हम करें. जब वो हमारे घर का केंद्र होगा, यहाँ पर सच और शांति होगा. यहाँ पर आत्मा का एहसास होना चाहिए जो घर को भार देता है और वो सभी जो यहाँ रहते हैं महसूस करता है. सिर्फ माता पिता द्वारा यह सलाह को निभाना नहीं है, भले ही या उनका कार्य है करने को. बच्चे घरों की मसीह केंद्र की कोशिश में जिम्मेदार हो सकते हैं. यह जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को सिखलाए कि ये जाने कि किस तरह उनके कार्य एक को बदलता जो उनके घर में रहते हैं. बच्चे जिन्हें उनके कार्य को करने का एहसास कराया जाता है, सच्चे वे अच्छे कार्य हो या नहीं, परमेश्वर के राज्य में भरोसेमंद नागरिक बनते हैं. मैं जानता हूँ कि तुम कुछ मूल सिद्धांत को देख सकते हो जो उधारकर्ता को तुम्हारे घर का मुख्य स्थान देता है. भविष्यवक्ता का सलाह कि दैनिक वेक्टर और प्रवीर अपरात्मा दैनिक व्यक्तिगत और प्रवीर धर्मशास्त्र अध्ययन हो और साप्तिक परिवार गुरुवाली शाम सभा बहुत जरूरी है. हमेशा कि इस कार्य के बिना मुश्किल होगा इस दुनिया से वो शांति और सुरक्षा पाना. उन भविष्यवक्ताओं को शिक्षाओं का पालन करना चाहिए जो मसीह चाहते हैं कि हम करें. अपने आने वाले खुशियों को मत कम करो. आसान मार्ग लेकर बजाय भरोसेमंद सुसमाचार सिद्धांत को अपना कर. याद रखो, छोटे कार्य बड़े चीज़ों की ओर ले जाता है. उसी तरह मामूली लापरवाही से वो धूरी बड़े मुसीबत में डाल सकती है. ज़्यादा ज़रूरी है कि साधारण लागू रहने वाला सही आदतें जीवन में बहुत खुशियां भर सकती है. तुम आत्मिक के बच्चों, तुम युवा कार्यक्रम के जवान पुरुष और महिला, और तुम अभी के के सेवा में के विश्वासी प्रचारण को ऐसे कार्य को कर रहे हो जो मैं अपने उम्र में नहीं कर सकता था। मरणशील जीव के पूर्व के जीवन में तुम विश्वासी सच्चे और साफ था। यह तुम मेहनत करते थे गुण और क्षमता के पाने के लिए ताकि अपने आप को तैयारी करो। नैतिकता का समन्वय हिम्मत आत्मा निर्भरता सम्मान और सफलता से करने के लिए बहुत दिन नहीं हुए तुम मरणशील जीवन में आए थे। उन सभी अनमोल चेताओं और कभी ना खत्म होने वाली संभावना तुम्हारे महान संभावना और चमत कम या नाश हो सकता है अगर तुम शैतान द्वारा प्रेरित बुरे कार्यों पर गौर करोगे। फिर भी शैतान उदारकर्ता को हरा नहीं सकता है। शैतान का नसीब थे को चुका है। वह जानता है कि वह हार चुका है मगर वो जानता जितना भी हो सके को बर्बाद करना चाहता है। वह तुम्हारे सच्चाई और क्षमता को नष्ट करेगा तुम्हारे कमजोरियों को बढ़ाकर। प्रभु की ओर रहो और तुम सभी समय विजय होंगे। तुम उसी दुनिया में जहां विज्ञान तेजी से आगे बढ़ता रहा है मेरे पीढ़ी की है लोग इस संभावना से मिलकर चलने में कठिनाई महसूस करते हैं। किस तरह से विज्ञान पर निर्भर होते हैं यह सफलता आशीर्वाद है रुकावट भी हो सकती है। विज्ञान जब समझा गया और सही कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया करता नहीं हो सकता है बल्कि धार्मिक वार्तालाप को बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर हम में से कई एक पास अपने खुद के इलेक्ट्रिकल चीज़ों है जो हमारे जेब में एक सकता है। हम उसके बिना बहुत कम रहते हैं। हम उससे दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। असौभाग्य से ये चीज़ें बेकार और समय को बर्बाद करती है मगर सही तरीके के इस्तेमाल से ये विज्ञान समझ के बुरे चीज़ों से बचा सकती है। बहुत सालों पहले ये किसने सोचा होगा कि पूरे साल के कार्य और सालों के महासम्मेलन के संदेशों के जेब में रखा जा सकता है। सिर्फ उसे जेब में रखने से तुम सुरक्षित नहीं हो मगर सीखने समझने और हर दिन खाली समय पर सुनने से आत्मा द्वारा वार्तालाप होगा। समझदारी से चुनो कि तुम किस तरह विज्ञान के इस्तेमाल करोगे। अपने इलेक्ट्रॉनिक औजार पर ज़रूरी समाचार को लिखो और उस पर हमेशा अमल करो। अगर तुम्हें जवान लोगों से समाचार के एक भाग को हमेशा देख लोगे जिस तरह तुम ठेक संदेश को बेचती हो तुम हजारों के समाचार के भागों को सीख सकते हैं। वो भाग प्रेरणा के एक मुख्य भाग हो सकता है और पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकती है जरूरत पड़ने पर। यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में पूरी कोशिश करें पवित्र आत्मा के विनम्र मार्गदर्शन वाले प्रभाव के आमंत्रित करें ताकि उदारकर्ता हमें घर का मुख्य भाग हो। जल्द से उस प्रेरणा पर चलने से हमें और ज़्यादा मजबूत होते हैं और ज़्यादा शांति तुम्हें प्राप्त होगी तो जब तुम दूसरों के सेवा के साथ आज्ञाकारी होगे। कई लोग जिनके पास कुछ ही गुण है विनम्रता और दान के साथ उन्हें देती हैं जो उनके इर्द गिर्द में है। स्वार्थपरत बुराई के जड़ है। बुराई की प्रतिकार उदारकर्ता के जीवन में उदाहरण है। उसे हमें दिखलाया कि किस तरह से हम अपने जीवन से दूसरों की सेवा निस्वार्थी से कर सकती है। मैंने एक सच्चाई को सीखा है जो मेरे जीवन में हमेशा दोहराया गया है जिसे मैं एक खास नियम की तरह जाना है। यह परमेश्वर के शक्ति को आज्ञा और सेवा की तरीके से बतलाता है। जब हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके बच्चों की सेवा मतलब के करते हैं परमेश्वर के प्रति प्राकृतिक शक्ति मिलती है और ज़्यादा शक्ति प्राप्त होता है जो हमारे पास नहीं है. हमारे देखरेख, हमारे गुण, हमारे क्षमताएँ बढ़ती है क्योंकि हम प्रभु से मजबूती और शक्ति प्राप्त करते हैं. उसकी शक्ति एक मूल भाग है घर में शांति को बनाने के लिए. जब तुम अपने घर को उधारकर्ता पर केंद्र करते हो या प्राकृतिक तौर से सिर्फ तुम्हारे परिवार को नहीं बचाता बल्कि उन मित्रों को भी जो और भी ज़्यादा मुश्किल के समय में रहते हैं, वो ये एहसास करें कि वो अपने घर पर है, घर पर ही है. अपने घरों में इस तरह के मित्रों को आमंत्रित करो. वो मसीह को मुख्य स्थान पर आगे बढ़ाएंगे. तुम्हारे बच्चों के मित्रों के साथ मित्र बने, उनके लिए एक लायक उदाहरण बनो. एक महान आशीर्वाद जो हम दुनिया के दे सकते हैं वो है मसीह केंद्रीय घर, जहाँ समाज सुसमाचार की शक्ति सिखलाया जाता है, वादा निभाया जाता है और बहुत प्यार है. कई सालों पहले एक मिशन बैंड के बाद मेरी पत्नी जनीन ने मुझे एक बड़े बहन के बारे में बतलाया जिसे वो मिली थी. जनीन ने उसके परिवार के बारे में पूछा था. वो चकित रह गया जब उसने कहा कि वह उसके पास कोई परिवार नहीं था. उसने बाद में बतलाया कि उनकी माँ ने उसकी जन्म के बाद उसके सरकारी भाग को पालने के दे दिया था. उसे अपने बचन के दूसरे पालन वाले को घर में बताया था. वोट के एक प्यारे परिवार ने उसकी मदद किया था मिशन के सेवा को और अवसर को पूरा करने में. बाद में जनेन ने मिशन प्रधान के पत्नी से अच्छा एल्डा के बारे में पूछा. उसने जाना कि कुछ ही महीने पहले वो एल्डा एक मिशन घर पर था कुछ दिनों के लिए उसके बीमार का कारण. उस समय के दौरान उसने परिवार घरेली शाम में साथ दिया. उसके वापस मिशन पर जाने के पहले उसने मिशन प्रधान से पूछा कि क्या वो अपने मिशन के अंत में बाद दो या तीन दिन मिशन घर पर दोबारा बिता सकता है. वो देखना चाहता था कि तरह मसीह केंद्र परिवार संचालन करते हैं. वह जानता था कि वो अपने परिवार को उसी तरह बनाए. सभी कुछ करो इस तरह कि परिवार को पाने के लिए उन तक पहुंचो जो मुसीबतों के स्थितियों में है. सच्चे मित्र बनो. इस तरह के अंत तक का मित्र दूसरों को अंत तक के मुसीबतों के समय पर मदद करता है और हमारे जीवन को और भी ज़्यादा खुशहाली देता है. यह एक साधन नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत मदद को पाने के लिए, बल्कि एक खजाना जो पसंद और बैठ सको. उनके अपने घर में आमंत्रित करो जिनके शक्ति की ज़रूरत है मसीह केंद्र घर में रहते हुए. मैं कुछ अंतिम बात बतलाता हूँ उनके बारे में जो परिवार के सदस्यों को प्यार करते हैं, जो सही चुनाव को नहीं बनाता है. ये हमारे अधियारे और अंत तक जलने को चुनौती देता है. हम प्रभु में विश्वास करना चाहिए उसकी समय अनुसार ताकि हमारे प्रार्थना पूरी हो और बचाव प्राप्त हो सके. हम सेवा आशीर्वाद देने और सभी कार्य में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए सब कुछ करते हैं. हम विश्वास से कार्य को करते हैं और याद रखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर पर छोड़ा जाता है. वह हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके चेहरों में अपने परेशानियों को रखें. विश्वास से हम जान सकते हैं कि आज्ञाकारी नहीं है को प्यारी करना छोड़ना चाहिए, बल्कि प्यार उदारकर्ता की निगरानी में है. दूसरों में अच्छाई को देखो, उनके बुराई को नहीं. कुछ समय पर दाग को साफ करने के लिए समय लगता है, मगर हमेशा उसके सद्गुण को बढ़ाओ. जब तुम ऐसा महसूस करो कि वहाँ पर एक छोटा सा ही ऐसा है या आशा छोटा है बल्कि बड़ी जो जोड़ी हुई आशा है, यह तुम्हें मदद करेगा डर से निकलाए निकालने में सच्चे तरह से जीवन को बिताने के लिए आगे बढ़ो और प्रभु में विश्वास करो। हमें उसकी चिंता नहीं करना चाहिए जो कुछ हम नहीं कर सक पाते, जो करने को प्रभु ने सलाह दिया है। उन्हें भी ही भी कहा था कि सभी चीज़ों के लिए समय और मौसम है। मार्गदर्शन को पाने के लिए हमें सच्चा प्रार्थना करना चाहिए। वो हमें उसी ओर से जाएगा जिस ओर हमें अपने जीवन के समय पर चलना चाहिए। हम उसकी तरह सिख बाद बढ़ और बन सकते हैं एक बात के करने से। मैं ये गवाही देता हूँ कि सही तरीके से जीवन को बिताने से, यीशु मसीह के सुसमाचार पर चलने से, हमारे घरों में शांति और बचने का महान वादा मिलता है। यही पर फिर भी मुसीबतों से सिर का पीड़ा आएगा, मगर मुसीबतों के समय पर भी हम भीतरी शांति का आनंद हो सकते हैं और खुशी को माना सकते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह का बलिदान बहुत शांति देता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
अभी जल्द के अनुभव के मैंने शांति की सिद्धांत के बारे में सोचा कि खासकर यीशु मसीह के भूमिका के बारे में हमें आनंद व्यक्ति शांति को पाने की मदद करने में। पिछले कुछ महीने में दो कार्य ने मुझ पर गंभीर असर किया। पहला, मैंने एमली पाका के अंतिम संसार पर बातें किया। एक अनमोल 6 साल के बच्ची जिसको अपना जीवन को 25 और लोगों के साथ खो दिया, जिसमें 19 जवान बच्चे थे, कोनिकेट न्यूटन के एक दुखद गोलियाबारी में। मैंने उसके परिवार के साथ शोक प्रकट किया। मैंने जाना कि उसके माता पिता रॉबर्ट एंड अलिसा पाका मजबूत और विश्वासी थे। दूसरा, मैंने गिरजाघर के हजारों विश्वासियों सदस्य के अभिजान के आइवरी कोस्ट के शहर में मुलाकात किया। फ्रेंच बातें करने हुए पश्चिम अफ्रीका देश में अधिक संकट को झेला है, जिन्हें सरकार को अधिकार में ली था, और दो हाल ही राजनीतिक लड़ाई 211 को लेकर। कुछ कार्य ऐसा होते हैं कि जो हमें शांति से दूर करते हैं और हमें कमजोर महसूस करते हैं। कोई भी सितंबर 11, 2001 में हुए हानिकारक हमले को भूल नहीं सकता, यूएस के जो हम पढ़ता। इस तरह के कार्य हमें तुरंत ही एहसास करते हुए थे। हमारे सबसे बड़े बेटे और उसके पत्नी, जो अपने पहले बच्चे के इंतजार में थे, न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 3 ही ब्लॉक के दूरी राह पे थे। वे अपने कमरे से इमारत के छत पे, फिर उन्होंने दूसरे प्लेन को नॉर्थ टावर में देखा कि मृत्यु देखा। तुरंत ही उन्होंने ये जाना कि वो कोई भी दुर्घटना नहीं है और विश्वास किया कि मैनहट्टन के दक्षिण भाग खतरे में है। जब साउथ टावर गिर गया, उनके कमरे की इमारत खतरे से भर गया था, जैसे मैनहट्टन के निचली दक्षिण भाग को भर दिया। आश्चर्य में वो ये देखा हुआ था और आने वाले खतरों से चिंतित थे। वे सुरक्षित स्थान पर चले गए और मैनहट्टन स्टेक गिरजाघर इमारत लिंकन सेंटर में चला गया। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि दर्जनों और भी सदस्य निचले मैनहट्टन में है भी। वो निर्णय लिए थे कि स्टेक केंद्र में इकट्ठे हुए। उन्होंने किया हमें ये बताया कि वो कहाँ है। मैं संतुष्ट हुआ कि वो सुरक्षित थे, मगर उनके होने के स्थान पर असंभवित नहीं थे। हाल का परिचय सिखलाता है कि जायन की स्टेक बहुचकारी और तूफान से शरण और नाराजगी से सब पूरी धरती पर क्रोध पर प्ररोक की गिराया जाएगा। उद्धारकर्ता के जन्म पर स्वर्ग दूतों का दल ने परमेश्वर की प्रशंसा और घोषणा किया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मासूमों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। फिर भी ये दुखती रूप से देखा गया है कि परमेश्वर की पुत्र की पैदेश की आनंद महत्व के समय पर है। राजा हेरोद ने मासूम शिशुओं को मारा थे बेतलहम में। खुशहाली की योजना में चुना जरूरी है। ये हमें प्यार, बलिदान, व्यक्तिगत भर्ति और जरूरी अनुभव देता है हमारे आनंद प्रगति के लिए। यह मरणशालती के अनुभव में पैदा और जिन चुनाव भी देता है, उन चीजों से भी हम समझ नहीं पाते और दूसरे के लिए दुखित चुनाव से। स्वर्ग में लड़ाई में खुद को बचना था हमारे मनसालिक चुनाव और खासकर उद्धारकर्ता को धरती के धैर्य को समझने में। मैथ्यू के 10वीं अध्याय में कहा गया है, उद्धारकर्ता ने 12 को आदेश दिया और बतलाया कि उसकी मिशन की इस मनसाली जीवन की विश्वास शांति नहीं प्राप्त होगी। देवताओं को बदलाया गया है कि शांति की आशीर्वाद को घरों में निवर्षियों की जिन्हें तुम भेंट करते हो मगर चुनौती देते हो बड़ियों के बीच में। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेगा, पर जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसका उद्धार होगा। एक महत्वपूर्ण बात बतलाया गया है वेस 34 में, ये मत समझना कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। ये साफ है कि विश्वास शांति धरती पर मसीह के मरणशाली देरक्ष के दौरान और भी नहीं है। प्रभु ने प्रार्थनाओं, डॉक्ट्रिन और कवनन में बहुत ही जरूरी सिद्धांत को सिखलाया गया है। उन लोगों के लिए जो पश्चाताप नहीं करते, उनके आत्मा मसीह के आत्मा जो सभी इंसान को प्राप्त होता है कि दुनिया में आते हैं, सभी समय इंसान के साथ जगदाई नहीं करेगी। साथ धरती से शांति ले लिया जाएगा। भौष्विकता ने बतलाया है कि शांति को धरती पर लिए गया है। सुलिसिफा को रोका नहीं गया है और इस दुनिया में शक्ति को आजमाता है। सच्चाई की इच्छा हर सभी अच्छे लोग जो सभी स्थान पर रहे हैं और हमेशा राज्य दुनिया में शांति के लिए। हमें इस लक्ष्य पे पाना है कि लिए कभी भी हर नहीं मानना चाहिए। मगर प्रधान जोसेफ स्मिथ ने सिखलाया, दुनिया में शांति और प्यार का आत्मा कभी भी नहीं हो सकता है सब तक इंसान परमेश्वर के सच्चाई और परमेश्वर के संदेश को नहीं प्राप्त करेगा और उसके शक्ति और अधिकार को स्वीकार करे जो दिव्य है। हम गंभीरता पूर्वक विश्वास शांति के लिए आशा प्रदान करते हैं, मगर ये है हमारे कार्य है व्यक्ति और परिवार की तरह है। ये शांति वादा किया हुआ उपहार और उद्धारकर्ता के मिशन और प्रायश्चित के बलिदान है। ये सिद्धांत डॉक्ट्रिन और कवनेंट्स में संक्षेप में लिखा हुआ है। ये जो बतलाया है कि हम ये सीखना है, जो अच्छा कार्य करते हैं वे इस दुनिया में शांति का उपहार प्राप्त करते हैं कि और जीवन में आने वाले दुनिया वाले में। प्रधान जॉन टेलर ने सिखलाया है कि शांति के सिर्फ नहीं कारण चाहिए बल्कि ये परमेश्वर का उपहार है। शांति जिसमें बतलाया रहा है ये सिर्फ आशाई शांति नहीं है, ये अंतंग का खुशहाली और धार्मिक संतोष है। प्रधान हैबा जे ग्रैंट ने उद्धारकर्ता के शांति को इस तरह से बतला है, उसकी शांति हमारे झेलने को काम करेगा। उन्होंने दया और दिलासा देता है जो भूखता और सच्चाई से झेलता है, नापसंद एहसास को निकालता है और हमारे हृदय में इंसान के लिए प्यार को बढ़ाता है और हमारे आत्मा के शांति और खुशहालों से भर देगा। मेरे एमली पाका के माता पिता के साथ सभा में उद्धारकर्ता के शांति उनमें झेलने को कम किया और मदद करता है उनके टूटे हुए हृदय को जोड़ने का। ये महत्वपूर्ण है कि तुरंत ही दागने के बाद भाई पाका ने बोलाता है क्षमा, जैसे तरह प्रधानकार कहता है उद्धारकर्ता की शांति हमारे प्रसंग के बदल सकता है, प्रभु के न्याय होगा। एवरी के कौशेंथ उनके देश में सैनिक लड़ाई के तौरन शांति को पाया। यीशु मसीह के सुसमाचार के जीने के साथ में खास दिया अपने पूर्व के लिए परिवार, इतिहास और मंदिर कार्य में। हमें सभी शांति चाहिए। शांति सिर्फ सुरक्षा या लड़ाई से कम निरंतर जगता और वादा नहीं। शांति आती है जब हम कि उद्धारकर्ता जानते हैं और हम कौन है, जानते हैं कि हम उसमें विश्वास है, उस पे प्यार करते हैं और उसके वादों को निभाते हैं, जैसे हम खास करके जीवन के दुखती मुसीबतों के द्वारा और करते हैं। प्रभु के जवाब ने प्रभु जोसेफ स्मिथ को लिबर्टी जेल में कहा दिया। परमेश्वर ने जोसेफ को बताया कि मेरे पुत्र अपने आत्मा में शांति रखो, उसके दुर्भाग्य और कष्ट थोड़ी ही देर रहेगी, फिर अगर वो जोसेफ अंत तक झेलेगा परमेश्वर उसके आनंद जीवन देगा। याद रखो परमेश्वर मुसीबतों को बनाए वाले नहीं है बल्कि शांति का। जो परमेश्वर को नहीं मानते ये कोई नहीं है। हम सभी ने ईश्वर के सलाह में भाग लिया जो स्मरशालिक चुनाव प्रदान करते हैं। हम ये जानते हैं कि ये हमें गुस्से को दिला सकता है, घबराए हुए रक्षे कमजोर, मगर हम ये भी जानते हैं कि उद्धारकर्ता की प्रायश्चित हम सबके लिए मनशालिक जीवन के हारेगा और देगा और हमको शांति देगा। एल्डर मेरेंडी हैंक्स के पास द्वार पर लट कर हुए, फिर हम जिसमें वरना है उनके बेटी का परमेश्वर में विश्वास करना है, ये जानना है कि सभी नियम नए से होगा और वह पर ऐसा करेगा। शांति सुख या खेलकूद या दोबारा बनाने के खोज से नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं, चाहे जितनी भी मात्रा में होगा। खुशियां और शांति नहीं बना सकती। एमरा लोटाइना के प्यारे प्रभुजन सही सवालों के पूछे हैं, कहां मैं शांति के लिए मोड़ सकता हूं, मेरा दया कहां है जब दूसरे मूल मुझे ठेक करते हैं। जवाब उद्धारकर्ता है, जो मूल है और शांति का परमेश्वर है, वह शांति का राजकुमार है। हम किस तरह उद्धारकर्ता के करीब रह सकते हैं? हम अपने आप को परमेश्वर के आगे विनम्र बने, हमेशा प्रार्थना करें, पाप से पश्चाताप करें, बपतिस्मा को लो, बपतिस्मा के पानी में जो कर टूटे हृदय और परमेश्वर यीशु मसीह का सच्चे चेले बने, बहुत ही अच्छा उदाहरण है और ने करे। राजा बेंजामिन के अपने प्रेरित संदेश मसीह के प्रायश्चित के बारे में के बाद सभी लोग धरती पर गिर गए पड़े। प्रभु की आत्मा उन पर आई और वे आनंद से भर उठे, अपने पापों से मुक्त हो गए और शांति से सच्चाई और बुराई का ज्ञान के पाने लगे, क्योंकि उनके पास मसीह का भारी विश्वास था। पश्चाताप और नेकी से जिन्होंने शांति की सच्चाई और बुराई के ज्ञान को पा सकते हैं, जो खुशहाली के लिए जरूरी है। जब वहाँ बात नहीं मानी जाती है, शांति को अपने बने हुए करो। शायद ये पर कुछ भी नहीं है शांति के बारंबार जब एक इंसान जैसे है, क्योंकि वे अपने पाप प्रभु पर डाल देता है और चाहता है कि सौभाग्य से प्रायश्चित का आशीर्वाद। मेरे हृदय में खुशी होती है जब सोचता हूँ कि हमारे समय में 10,000 जवान पुरुष, जवान महिलाएं और बुजुर्ग प्रचारकों ने यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के देवतों के नियुक्ति के स्वीकार किया है। वे शांति से पुनस्थापित सुसमाचार को दुनिया में पहुंचाते हैं, एक व्यक्ति और एक परिवार को एक समय पर को कार्य स्वर्ग पिता के वचनों तक शांति का। गिरजाघर बचने वाले है जहाँ मसीह के चेले शांति बताते हैं। कुछ दुनिया के जवान लोग कहते हैं कि ये धार्मिक है मगर पवित्र नहीं। धार्मिक महसूस करने पहला अच्छा कदम है, फिर भी ये गिरजाघर में हम संकट में होकर सीखते हैं और परमेश्वर के श्रेष्ठ वाणी को द्वारा पोषण होता है। ज्यादा जरूरी है गिरजाघर के प्रोहिती अधिकारी को पवित्र सिद्धांतों और वादों को प्रदान करते हैं जिससे परिवार कर साथ बनते हैं। ये धर्म विधि शांति लाती है क्योंकि वे वादों से बंधे हुए है प्रभु के साथ। मंदिरों वहाँ है जहाँ कई पवित्र धर्म कटी है और दुनिया से शांति भरी बच्चों का एक मूल्य भी। जो मंदिर के धरती पर जाते हैं वे मंदिर के खुलने पर जब जाते हैं भेंट करते हैं संपूर्ण से पहले हैं। मुझे एक अनुभव जो बहुत अच्छाई तरह था याद है, फिजी मंदिर के खुले हुए संपूर्ण पर यहाँ पर राजनीति मुसीबतों और थे। देश द्वारा दरक हो रहा था। फिजी सेना ने कुछ ही लोगों को गिरजाघर के खोलने पर इकट्ठा होने के आज्ञा दिया था और भोर ही छेलते थे संपूर्ण किया। सभी गिरजाघर के संदेश को आमंत्रित नहीं किया गया था और उनके सुरक्षा के निमित्त ये सिर्फ एक मंदिर का संपूर्ण था, नए नवू टेंपल के मंदिर जो बहुत ही मुसीबतों के स्थितियों पर हुआ था। एक इंसान जो मंदिर खुलने पर आमंत्रित किया गया था, हिंदू महिला जो हिंदू मसीह संस्कार की एक विनती रखे मगर उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो औरत था। दिव्य कमरे में दुनिया के खलबली से उसने रोया जब शांति की ऐसा को बदलाया जिसे वो बहुत नहीं कर सकी। उसने पवित्र आत्मा को दिलासा दिया महसूस किया था और मंदिर को पवित्र आत्मा चित्र की गवाही को बनाया था। उद्धारकर्ता सही शांति का मूल्य है जीवन की मुसीबतों से भी, क्योंकि उद्धारकर्ता के प्रश्चित से और उसका सुधारता सच्चाई से जिसने व्यक्तिक शांति का उपहार प्राप्त होगा, व्यक्तिगत तरह से रहेगा जहां से वे आगे गुजरे थे। उद्धारकर्ता ने अपने सभी देवताओं को वादा किया है कि वे आशीर्वाद प्राप्त करेगा शांति देने वाला के जो पवित्र आत्मा से, ये भी ये जरूरी है। शांति तुम्हें मैं देता हूँ, मेरे शांति मेरे तुम्हें दिया है, उस तरह नहीं जैसे दुनिया देता है, मैं तुम्हें देता हूँ। फिर उसके अंतिम प्रार्थना से पहले, दुनिया में तुम्हें मुसीबतों हो सकता है मगर अच्छे आत्मा के बनो, मेरे दुनिया से बाहर आएगा। एलाइजा स्नो ने इस विचार के बारे में सुधरता है, अपने हृदय को परमेश्वर के गुनगुना के लिए ऊपर उठाओ, अपने आनंद का अंत नहीं होने देना चाहे पैदा का पारोक भरी हो। मसीह ने कहा मुझे में तुम्हें शांति प्राप्त हो, मैं यीशु मसीह के नाम से बयान देता हूँ, आमीन।
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service of this young women's presidency, I put on my virtue tie. Now, brothers and sisters, I serve as a 70. The 70 are called to be messengers, to share the word of the Lord as we receive it from the apostles and prophets and from the Spirit, and to be a special witnesses of the name of Christ in preaching the gospel in all the world, in building up the church, and regulating its affairs. I grew up on a farm near Burley, Idaho, a real Idaho farm boy. As such, I learned to work. If you don't plant, you don't harvest. To work smart. If you irrigate and fertilize, you harvest more. The importance of timing. If you don't plant at the right time, an early frost can destroy the harvest. To do what is needed or ought to be done, regardless of what is enjoyable or preferable or convenient. You milk the cow when she needs to be milked, not when you want to. To be direct, with livestock and machinery involved, you don't have time to beat around the bush or to worry about being politically correct. In this respect, as I have served throughout the church, I have often asked, do you want me to speak directly or with sugar? As a rule, the saints have chosen direct. I will be direct today. Finally, as an Idaho farm boy, I learned to stick to the basics. Nothing is more basic to all of us and our doctrine than the truths of the first article of faith.
We believe in God, the Eternal Father, and in his Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost. Further, he is our Heavenly Father, who knows us, loves us, and wants us to return to him. Jesus is our Savior and Redeemer, who through the atonement made it certain we will overcome death and live again, and possible for us to be exalted and have eternal life. The Holy Ghost is our Comforter, Revelator, Teacher, Testifier, and Guide. We are not spiritual orphans. We are not alone. What are the advantages of having parents, of not being an orphan?
न होने का हम उनके अनुभवों से सीख सकते हैं, उनके चेतावनी से गुप्त खतरों से बच सकते हैं, उनके दृश्य द्वारा हम बेहतर समझ पाएंगे, हमें खोने की, हैरान होने की या धोखा खाने की जरूरत नहीं है। ये खास तौर पर सच है हमारे स्वर्गीय पिता को लेकर, जिन्होंने हमें सिर्फ रास्ता नहीं पर एकमात्र रास्ता सिखाया है। वाकई परमेश्वर के पास तरीका है जीने का, प्यार करने का, सहायता देने का, प्रार्थना का, मेलजोल का, नेतृत्व का, शादी का, बच्चे पालने का, सच्चाई जानने का, सुसमाचार बांटने का, वगैरह वगैरह। धर्मशंतों के अलावा तुम प्रभु का तरीका और लेखों से भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे ट्रू टू द फेथ फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ और जीवित धर्मदूतों और प्रॉफिट से। उदाहरण के लिए उन्होंने धर्मशास्त्रों में सिखाया है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, ना ही मेरे तरीके तुम्हारे। प्रभु कहते हैं, जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही हमारे तरीके के बीच और उनके पुचारों की बात जमीन आसमान का फासला है। आखिरी दिनों में एक बुराई है, अगर हर आदमी खुद की राह पर चलता है। नीति वचन में चेतावनी है, अपने खुद के आंखों पर होशियार मत बनो, अपने खुद के ज्ञान पर निर्भर मत बनो। हमें सिखा गया है प्रभु का तरीका इस्तेमाल करने, हमें निश्चित आशीर्वाद मिलेंगे, उनके वादों पर कहा होगा। पैगंबर सैमुएल की तालीम के समय प्रभु ने हमें तरीकों के बारे में समझाया। सैमुएल नया राजा खोजने गया था, प्रभु ने सैमुएल को सिखाया, रूप या ऊंचाई या कद पर ध्यान मत दो, लेकिन मैं इंसान ऊपरी दिखावट की ओर देखता है, मगर प्रभु हृदय की ओर देखता है। विश्व भर में गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता की इच्छा जाहिर है, प्रभु इस इच्छा से सहमत है पर चेतावनी देता है कि वो उनके तरीके से होना चाहिए, नहीं तो मदद करने की कोशिश में हम हानि पहुंचाएंगे। प्रभु ने हमें आत्मनिर्भरता की जरूरत सिखलाई है। हम मदद कर सके फिर भी नहीं करनी चाहिए अगर वो खुद किया जा सकता है। जहाँ भी ये किया है दुनिया ने बेकारी अनुदान की बुराइयाँ जानी हैं। सच में परमेश्वर भलाई जानते हैं। कुछ और उदाहरण देखें। प्रभु के पास तरीका है धर्म प्रचार करने का जो धर्मशास्त्रों और प्रीच माय गॉस्पल में विधिबद्ध है। उसका उपकरण आत्मा के निर्देशन में होता है। प्रभु अपने तरीके से प्यार करने का, दुनिया वाले कहते हैं कि महत्वपूर्ण है कि दो लोग आपस में प्यार करें। हमारे स्वर्गीय पिता सिखलाते हैं कि एक निर्धारित रास्ता और समय है उस प्यार का इजहार करने का, अपना संचलन करना। जोसेफ स्मिथ ने प्रभु का रास्ता जवानी से सीखा। गिरजे के नेतृत्व के तरीके के बारे में उसने समझाया, सही सिद्धांत सिखाते हैं, हम सही सिद्धांत सिखाते हैं और सदस्य खुद का संचलन करते हैं। हमें सिखाया गया है कि हमें प्रभु का रास्ता अपनाना चाहिए। कभी सोचते हैं हम कि हम कहीं दूसरी जगह जाके बसें, लेकिन हमारे बच्चों के बचाव में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं। जो घर के अंदर होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे कि जो बाहर होता है। गिरजे के आरंभ में प्रगम यंग जैसे सदस्य लोगों ने सदस्यों के अन्य स्थानों में जाने बुलाया गिरजे की स्थापना करने। विडम्बना की बात है कि आज भी वफादार सदस्य है जो जाने तैयार हैं पैगंबर उन्हें जहां भी भेजे। हम आशा करते हैं कि वहां 16 साल में जब मैं ह्यूस्टन में था सिर्फ एक बार मुझे फोन कॉल आया कि किस वार्ड को हमें ज़रूरत है, हम कहां सहायता कर सकते हैं। गिरजे के पहले सालों में ब्रिगम यंग सदस्यों को लोगों भेजते थे चर्च बांधने। आज भी वफादार सदस्य हैं जो कहीं भी जाने तैयार हैं। क्या हम प्रधान मॉनसून को 140 लाख लोगों को बताने की इच्छा है कि कहां जाना है उन्हें? प्रभु का तरीका है कि हम नेताओं के संदेश सुने, सही सिद्धांतों को समझे और खुद पर संचलन करें। गिरजे में होने वाली सभी बातों के साथ प्रभु का कार्य और गति हर तरफ बढ़ता है। ये और भी जरूरी है कि हम सब कुछ उसके तरीके से करें। खास पर उद्धार के कार्य में हम सीखते हैं हमारे पुत्र की उपहार में परमेश्वर ने एक बेहतर रास्ता तैयार किया है। मसीह का धर्म सिद्धांत ही रास्ता है। स्वर्ग के नीचे और कोई रास्ता नहीं है जिससे मनुष्य परमेश्वर के राज्य में मुक्ति पाए। जब हम दुनिया में इतने लोगों को व्याकुलता से जीते देखते हैं या बेहतर गलत रास्तों पर भटकते बुरे चुनावों का परिणाम बेकार में चलते हुए, मैं आलमा की तरह कहना चाहता हूँ, हाय अगर मैं फरिश्ता होता और हृदय की इच्छा पूरी कर पाता, मैं परमेश्वर की तुरही से बोल पाता और आवाज़ से पृथ्वी को हिलाते हुए सभी को पछतावा करने कहता, हाँ मैं हर आत्मा से मुक्ति की योजना घोषित करता कि वो पछतावा करे और हमारे परमेश्वर के पास आए और उसकी राह अपनाए ताकि सारे जगत में पीड़ा न हो। फिर मैं बयान देता हूँ, प्रभु के पास रास्ता है। स्वर्गीय पिता हमें जानते हैं, प्यार करते हैं, हमें मदद करने का सही तरीका जानते हैं और हम आत्मिक यतीम नहीं हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह रास्ता, सच्चाई और जीवन है। उनका रास्ता शाश्वत सच्चाई पर आधारित है और हमें इस दुनिया में शांति और आने वाली दुनिया में शाश्वत जीवन दिलाएगा। ये बयान मैं ईसा मसीह के नाम देता हूँ। आमीन।
उद्धारकर्ता का मसीह जीवन का देख रेख पूरा हो चुका था। गेतसेमनी और क्रूस पर उसका तड़पना समाप्त हो गया था। हम एक अध्याय से एक सीखते हैं उन्होंने अपने पूर्ण जीवन का बाद 40 दिनों तक देखरेख किया, देवताओं को दिखाई दिया और परमेश्वर के राज्य की बातें करा किया। उसने बतलाया कि प्रभु कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे जुदिया और समरिया में और धरती के कोने कोने में गवाही दोगे। इसके थोड़ी ही देर में वो ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया, और उसके जाते समय वो आकाश की ओर देखा, जो कुछ दो पुरुष सफेद वस्त्र हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उसने कहा, हे गलीली के पुरुष, तुम क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, वैसा ही वो आएगा। वास्तव में उद्धारकर्ता फिर आएंगे अपने दूसरे अनुमान में, मगर तब तक यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरे दुनिया में पहुंचाना है। मैथ्यू में से हम देवदूत के लिए एक खास आदर्श के बारे में सीखते हैं कि उन्हें सुसमाचार को सभी देशों में बताना है। यीशु ने उनके पास कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे गया है, इसलिए तुम जाओ, सभी जातियों लोगों को चेलो बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र के विषय में बपतिस्मा दो। गिरजाघर के शुरुआत के दिनों के द्वारा समय का मध्याह्न में सुसमाचार को सिर्फ इसराइल का घर ले गया गया। फिर पीटर जो बुजुर्ग देव थे कि समय आ गया कि सुसमाचार को इसराइल के बाहर और गैर यहूदियों में ले जाया जाएगा। एक्स का 10वें और 11वें अध्याय में हमें ये रीति और तरीका का समझाते हैं जिसके द्वारा गिरजाघर के फैलने की बात परमेश्वर के अन्य बच्चों की खबर उसके अध्यक्ष असर पूरे सदस्य को दी गई। कॉर्नेलियस जो एक गैर यहूदी सेना में था और एक अच्छा आदमी था का इस्तेमाल करने प्रभु ने पिता पीटर को समझाने में मदद किया कि सुसमाचार गैर यहूदियों के पास जाएगा। एक सिद्धांत वो प्रतिकरण जिससे गिरजाघर के कार्य में ये बदलाव आया था पीटा को मिला था, जो बुजुर्ग देवता था। हम जानते हैं कि उस समय के सुसमाचार गैर यहूदियों के पास तेजी से गया। गिरजा के फैलने का एक उदाहरण है समय पॉल का धर्म पवित्र, जो आगे चल गैर यहूदियों का महान देव बना। उसे दमास्कस जाने के रास्ते पर एक दृश्य दिखाई दिया जब उसने एक ज्योति देखा और एक आवाज़ सुना, अपने पापों का प्रायश्चित किया और परमेश्वर की नियुक्ति मिला, और फिर वो मसीह में हो लिया। आओ हम इस समय से 1800 वर्ष के घटनाओं पर गौर करें। सुसमाचार पुनर्प्राप्त हुआ, पुनः स्थापित हुआ या दूसरे आगमन के वापसी से पहले में, मैं गवाही देता हूं कि भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा गिरजाघर को पुनः स्थापित किया गया है और वह आगे बढ़ेगा। उनका आदेश सुसमाचार को पूरे दुनिया में फैलाया जाएगा। 1830 में यीशु मसीह का गिरजाघर संतरी दिनों के संतों के आयोजन से लेकर गिरजाघर स्थिरता से आगे बढ़ रहा है दुनिया भर में, देश से देश, संस्कृति से संस्कृति, लोगों से लोगों तक प्रभु की इच्छा और उनके समय से अनुसार। फिर 1978 में बुजुर्ग देवदूत द्वारा प्रतिकरण ने निर्धारित किए तरीके के अनुसार इस बार प्रधान स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ये प्रतिकरण आया कि दुनिया भर के सभी योग्य पुरुषों को प्रतिष्ठित और पुनर्स्थापित सुसमाचार का हर एक आशीर्वाद दिया जाएगा। इस बार न सिर्फ थोड़ा ज्यादा मगर स्वर्ग के पिता के सच्चे बच्चे सुसमाचार के सभी आशीर्वादों को पा सके। कितना उपयुक्त है ये कार्य इन दिनों परमेश्वर के राज्य के लिए जब मसीह दूसरी बार आगमन करेगा। निजी रूप में मुझे मिशन प्रधान की नियुक्ति मिली थी और बहन डिक्सन और अपने परिवार को मेक्सिको ले जाने वाले ही थे जब एल्डर रिचर्ड स्कॉट उस समय सथर के पहले परिषद के सदस्य थे ने मुझे बताया कि खास प्रतिकरण के बारे में जो मिला था। मुझे याद है मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब वो मुझे सभी कुछ बता रहा था। मेरे प्रशंसा के शब्द नहीं की नियुक्ति में जानता था कि ये सच्चा है कि समय आ गया है कि सभी मनुष्य को सुषमाचार के धर्म विधियों वादियों आशीर्वादों को रखने का। वो 34 वर्ष पहले था और मैं नहीं चाहता था कि मुझे अपने देखरेख के कई वर्ष गिरजाघर के अफ्रीका वेस्ट चित्र में गुजारना होगा। विश्वास करने वाले विश्वासी लोग जिनके जीवन में 1978 के पर प्रतिकरण का भारी असर पड़ेगा। बहन डिक्सन और मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहे थे और वो अनुभव आश्चर्यजनक और जीवन बढ़ने वाला रहा है। जब एक ढल के रूप में देखा जाए पश्चिम अफ्रीका के लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, औरों के साथ विश्वास करते बांटने में कोई शर्म नहीं देखते हैं और उनमें नेतृत्व की चमक बहुत है। वो गिरजाघर में सैकड़ों के संख्य में सदस्य बांटे हैं और हर सप्ते ये जैसे हो कुछ वोट्स की संख्याओं अनुचित होती है। अफ्रीका पश्चिम क्षेत्र में हर बार सभी अफ्रीकन पृष्ठ सहायकता नेताओं होते हैं। मैं हृदय इस इच्छा करता हूं कि तुम संतों के आबा नजरिया या अकरा गाना के मंदिरों में इकट्ठा हो जहां तुम्हें संतों के लगन का अंदाज होगा और तुम पूरी तरह से अफ्रीका मंदिर अध्यक्षता को जानोगे और अफ्रीकन क्षेत्रीय सगर को जो आज हमारे साथ सम्मेलन केंद्र में है जो वकील शिक्षक और व्यापार के मालिक है या कोई तुम अफ्रीका के स्टेक या और नेताओं के में मिल चुके हो। अफ्रीका में रविवार की कक्षा सहायक जो प्रस्तुत कक्षा जाना एक पवित्र अनुभव है जहां गिरजाघर का अध्याय सच्ची का पालन होता है। अफ्रीका में सुषमाचार एक खुशहाल लोगों तक जा रहा है जहां भारी दिखावा कोई मायना नहीं रखता। पश्चिम दुनिया के लोगों के जीवन की तरह वो आंतरिक संस्कारिक वस्ताओं के पाने की इच्छा करते हैं। अफ्रीका लोगों के बारे में कहा जाता है उनके पास कम महत्व के बहुत कम चीज़ें हैं। उन्हें भारी घरों और नई गाड़ियों में कम दिलचस्पी होता है मगर स्वर्ग के पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह को जानने में और आनंद विश्वास बनाने में बहुत दिलचस्पी होता है। उनके विश्वास के प्रेरित परिणाम के कारण प्रभु उन्हें उत्प्रेरण तरीकों से सफल बनाता है। जैसे हम उन्हें जानते हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी वो यीशु मसीह के गिरजाघर अंत्यदिनों की बहुत बढ़ती होगी। जब डेनियल जो पुराने नियम का भविष्यवक्ता था ने अंतिम दिनों के परमेश्वर के राज्य की कल्पना की थी दुनिया के कोने कोने में फैलते हुए जैसा एक पत्थर अपने बिखर हुए पहाड़ से अलग होकर जब तक कि पूरे दुनिया में ना फैल जाता। ये बिल्कुल सही है कि हमारे आश्चर्यजनक अफ्रीकन भाइयों और बहनों इस भविष्यवाणी की पूर्ति का जरूरी भाग बने और इसलिए कि वो प्रतिकाव का कारण ऐसा होगा वो प्रभु के निर्धारित आदर्शन के अनुसार होगा। मैं गवाही देता हूँ कि हमारा स्वर्ग पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है कि यीशु मसीह है और कि सुषमाचार सभी के लिए उपलब्ध है दोनों जीवित और मृत। यीशु मसीह के नाम पवित्र नाम से आमीन।
मेरे संदेश एक परमेश्वर सवाल का जवाब है जो धार्मिक रूप से जरूरत है। लॉ ऑफ चेस्टिटी क्यों जरूरी है? मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उन सिद्धार्थियों की सच्चाई की पुष्टि करे जिन पर मैं जोर देने वाला हूं। चेस्टिटी का आनंद महत्व तभी समझा जा सकता है जब हम स्वर्ग के पिता के खुशहाली का योजना को उनके बच्चे के लिए है जो भरी मतलब को जानेंगे। सभी मानव पुरुष और औरत परमेश्वर के सच्चाई में बनाया गया है। हर एक स्वर्ग के माता पिता और प्रिय पुत्र या पुत्री और है एक और दिया गुण सब हो गए। सभी पुरुष और औरत इस धरती पर आकर मनसालिक बने और पहले परमेश्वर के साथ रहते थे। पिता का योजना अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए है, मुमकिन करता है कि हम शरीर पाए, मनसालिक अनुभव पाए और बढ़े, आगे बढ़े। हमारे शरीर की बदलाव में इतने सारे गहरे और उचित अनुभव पाते हैं जो सिर्फ हमारे मनसालिक जीवन से पूर्व नहीं होता। इसलिए हमारे संबंध आने लोगों से हमारी क्षमता, सच्चाई और पहचान के अनुसार जीने हैं, और हमारी योग्यता यीशु मसीह के सुसमाचार के सिद्धांतों और धार्मिकताओं के का पालन करने का दुगना है। जब तक हम मनसालिक है, हम कोमलता, प्रेम, दयालुता, खुशहाली, दुख, निराशा, पीड़ा और शरीर की कमजोरियों के कारण चुनौतियों का अनुभव करते हैं, ऐसे तरीकों से जो हमारे आनंद जीवन के लिए तैयार करता है। सीधे संदर्भ में शिक्षा है सीखने के लिए और अनुभव है जिससे हमें गुजरना है। धरती की रचना के बाद आदम को एडन के बगीचे में छोड़ा गया। आदम के अकेला रचना अच्छा नहीं, और ईव आदम की पत्नी और सही मददगार बनी। दोनों पुरुष और औरत के धार्मिक, शारीरिक, मानसिक और बहुत क्षमताओं के मिलाकर के खुशहाली की योजना को अंजाम दिया जा सकता था। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और पुरुष बिना स्त्री की है। पुरुष और स्त्री को एक दूसरे से सीखना, को मजबूत करना, आशीर्वाद देना, संपूर्ण करना और सबसे अच्छा बनाना है। मनसालिक जीवन पाने का रास्ता दिव्य रूप से नियुक्त किया गया है। पहला आज्ञा परमेश्वर ने एडम और ईव को दिया था, जो माता पिता बनने के साथ पति और पत्नी के कर्तव्य में है। वो आज्ञा की दुगना करो और आबाद करो अभी धरती पर है। इसलिए ये पुरुष और महिला के बीच विवाह अधिक पूर्ण तरीका है, जिससे द्वारा मनसालिक जीव से पहले ही मनसालिक में रहता है। संपूर्ण रूप से ये संबंध नहीं रखना विवाह से पहले और विवाह के बाद पूर्ण रूप से चेस्टिटी के पवित्र माध्यम को सच्चाई रखना चाहिए। बच्चा पैदा करने की शक्ति धार्मिक रूप से आवश्यक है। इस शक्ति का दुरुपयोग पिता के योजना के लक्ष्य और हमारे मनसालिक जीवन की सच्चाई की भाग करता है। हमारे स्वर्ग पिता और उसके प्यारे पुत्र ने हमें बनाया है। हमने अपनी थोड़ी सी बनने ही शक्ति सौंप दी है, क्योंकि ये पिता का योजना है। आवश्यक बात है, खास सलाह दी गई है कि क्षमता कि सही इस्तेमाल के लिए जिससे जीवन उत्पन्न होता है। हम इस दिव्य शक्ति के बारे में कैसे महसूस करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, इस हमारे मनसालिक जीवन के खुशहाली पर गहरा असर पड़ेगा। मनसालिक जीवन बनने की शक्ति पैदा सबसे बढ़िया शक्ति है जो परमेश्वर ने सब बच्चों के लिए है। उसके इस्तेमाल पहले नियम द्वारा दिया गया है, अब अगर एक जरूरी नहीं नियम गया है इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का एक ही है, ना बदलने वाला स्तर है। यहाँ संपत्ति नियुक्ता गया नस्तिकी संबंध तभी ठीक है जब पुरुष और औरत विवादित है परमेश्वर की योजना अनुसार। ऐसा शारीरिक संबंध सिर्फ ढूंढने की उत्सुकता, भूख मिटाने वाली या मनोरंजन का जरूरी नहीं है जो लालच से हो। यह सिर्फ कुछ हासिल करने या नाटक ना भाग लेने जैसे नहीं है, बल्कि मरणशालिक शीलता में दिव्य स्वभाव का हमारा अंतिम कार्य है, और पति और पत्नी के बीच बहुत और धार्मिक बंधनों के मजबूत करने का एक रास्ता है। हम प्रभावित हैं जिन्हें नैतिक चुने की शक्ति मिलती है, और हमारे पहचान हमारे दिव्य विरासत परमेश्वर के बच्चे से मिल है। और ना सिर्फ युवा संपत्ति, व्यापार, आधुनिक रवैये या सांसारिक ज्ञान विद्या द्वारा कुछ हद तक वो स्वाभाविक व्यक्ति जिसके बारे में राजा बेंजामिन ने कहा जीवित है और हमारे अंदर है, वह स्वाभाविक पुरुष या महिला पश्चाताप नहीं करना चाहता, विश्वास और वसना में लगात रहता है, खातिर में वाला और वो घंबरित और लच्चा है। जैसे प्रेजेंट स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने कहा, वो स्वाभाविक व्यक्ति दुनिया में रहने वाला है व्यक्ति, और जैसे बदतमीज जानवर वाले भावनाओं को अपने धार्मिक प्रणव को मौका दिया है। इस अतिरिक्त वो मसीह का पुरुष धार्मिक है और अपने उद्यन जानों पर लगाम रखता है, परमेश्वर के शब्द को थामने रहते हैं, अपने आप को भूलकर उनका क्रूस अपना ऊपर उठाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर की पुत्रियां हैं, हमें दिव्य गुण पाए हैं उनसे, मगर हम इस समय एक पाप भरे दुनिया में हैं, जिस चीज से हमारे शरीर की रचना हुई है वो पाप से भरी और है, और पाप छल और मृत्यु और कृशपात में आसनी और शक्ति है। फलस्वरूप आत्मा आदम का पतन और उसकी शार्मिक और संसारिक प्रभाव हमारे शारीरिक द्वारा असर करता है। प्रभु जैसे यीशु मसीह ने पीटा से जोर दिया, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मरणशालता के परीक्षा के सही विशेषता है फिर इस सवाल में छिपा, क्या मैं स्वाभाविक व्यक्ति के विवेक में आ जाऊंगा, या क्या मैं पवित्र आत्मा के बात को सुनूंगा और स्वाभाविक व्यक्ति का ठुकरा दूंगा और शांत बनूंगा मसीह प्रभु के प्रायश्चित के द्वारा। ये है परीक्षा, ये भूख, इच्छा, कमजोरी और इराकत सबसे व्यक्ति पर विजय पाएगा जो सकता है यीशु मसीह के प्रशिक्षा है। पिता का योजना है अपने बच्चों को निर्देश प्रदान करने का, उन्हें खुश रहने में मदद करने में और उनके सुरक्षित उसके पास घर के जाने के। इसके विपरीत लूसिफा कोशिश करता रहता है, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को जलने और उदास बनाने और उनके आनंद प्रगति को रोके। झूठ के पिता के मुख्य लक्ष्य है कि हम उसकी तरह अश्लील हो जाए। लूसिफा चाहता है कि हमारा अंत को अंधकार में अकेले और बिना आशा के रहने से। शैतान बिना ठकने काम करता रहता है पिता के योजना के सबसे आवश्यक भागों को बदलने में। उसके पास शरीर नहीं है और उसका आनंद प्रगति थम चुका है, जैसे नदी का बहता पानी बंद से रुक लिया जाता है, वैसे ही शैतान के आनंद प्रगति रुक लिया जाता है। उसके पास एक शरीर ना होने पर उसके विरोध का कारण लूसिफा ने खुद के लिए सभी मरणशाली के आशीर्वादों और अनुभवों को ठुकरा दिया जो उनके शरीर और हड्डियों रहने से मुमकिन होता। वो उस ज्ञान को नहीं सीख सकता जो सिर्फ इसके एक शरीर वाला आत्मा से खाता है। एक धर्मशास्त्र के अंत में शर्पित शब्द को अंत है कि वो स्वर्ग के पिता के एक प्रगति नहीं है पाएगा और उसकी तरह नहीं बनेगा, क्योंकि ये शरीर इतना आवश्यक है पिता के खुशहाली की योजना में कि हमारे धार्मिक बंधनति में। लूसिफा चाहता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमें भाग्य में लाकर ताकि हमें अपने शारीरिक का दुरुपयोग करें। आनंदता का एक निंदा है कि शैतान जो अशीन या क्योंकि उनके पास शरीर नहीं, हमें लुभाता है अपने अश्लीलता की और हमें हमारे शरीर का दुरुपयोग करवाता है। जो चीज उनके पास नहीं है वो नष्ट करना चाहता ताकि हमारे आत्मा नष्ट हो जाए। चेस्टिटी का कानून का ना पालन करने एक घोर पाप है और हमारे मंदिर जैसा देह का दुरुपयोग है। जो लोग उद्धार के योजना को चाहते हैं, समझते हैं, उनके लिए शरीर को अपवित्र करना विरोध का कार्य है और हमारे सही पहचान परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां होने थे। एल्मा ने अपने पुत्र सिबलोन के सलाह दिया कि वो सही उत्तजाव पर लगाम दें जिसके प्रेम से परिपूर्ण रहे। महत्वपूर्ण ध्येय से हमारे अंदर की स्वाभाविक व्यक्ति का कंधा सीखे और परमे और गहरे और एक लंबे समय तक ठके परमेश्वर का प्रेम और उसके बच्चे के प्रति के। प्रधान मेरन जी रोमनी ने घोषणा की, मैं कोई और आशीर्वाद के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, इतना जाता है जलती है वो सोचना और शुद्ध लोगों के वादे के चाहता है। यीशु ने खास प्रतिफल बतलाया अलग अलग सदगुण के लिए, मगर सबसे अच्छा सदगुण को सबसे है। ये है उद्धारकर्ता का वादा। अगर हम पवित्रता से अपने सोच को हमेशा सुधार रखेंगे तब हमारा हिम्मत मजबूत होगा परमेश्वर की उपस्थिति में। हमें ये भी वादा दिया गया है कि जब हम पवित्रता को मार्ग चाहेंगे पवित्र आत्मा सभी समय का साथी रहेगा। इसलिए चेस्टिटी के कानून को जीने से कुछ ऐसे महान आशीर्वाद मिलते हैं जो पुरुष और महिला कभी मरणशीलता में मिलेगा। सही धार्मिक है। हमारा सभ्योग इच्छा किसी चीज का भाग होने का प्राप्त होता है धार्मिक में, जब हम ज्योति में आशा का साथ चलते हैं। अब मैं से आप में से कुछ लोग को जो इस संदेश को सुन रहे हैं को यही संबंधित या आने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। उद्धारकर्ता को आस्कर महान देतर कहा जाता है और इस शिक्षा का दोनों परिस्थमत और स्वाभाविक मानता है। जब हम दर्द में रहते हैं हम आम तौर पर पाने और दवा और उपचार के लिए आभारी होते हैं जब हमारे पीड़े को कम करने में मदद करता है। सोचिए कि पाप एक आत्मिक घाव है जिससे हम सम्मित होते हैं। जैसे एल्मा ने अपने बेटे कोरिएंटन से कहा, आत्मा का पछताव सर्वाधिक हमारे आत्मा के लिए वही है जो पीड़ा हमारे शरीर के लिए है। एक चेतावनी खतरा के है कि ज्यादा नुकसान है। उद्धारकर्ता के प्रसिद्ध के आधार पे वाला मरम्मत मिलता है। तुम्हारे बिशप या शाशालिक स्टेक प्रेसिडेंट डॉक्टर का सहायक है जो तुम्हारे पश्चाताप का सच्चा चंगाई में मदद करेगा के लिए जिम्मेदार है। कृपा याद रखे किसी भी तरह की तुम्हारे पश्चाताप का बल और तुमसे तुम्हारे पापों के स्वभाव और संगठन से मेल खाना चाहिए, खासकर अंतिम दिनों के संतों के लिए जो पवित्र वादे में है। जिस धर्मशास्त्र पर मैंने आज बात की है शायद कई लोगों को पुराना लगे इस ऐसे दुनिया में जैसे बच्चे पैदा करने की शक्ति का बहुत मजा उड़ाया जाता है और मरनो जीवन का कोई मोल नहीं है, मगर प्रभु की सच्चाई झूठ प्रचालित या समझ की रही से नहीं बनता। मैं वादा करता हूँ कि चेस्टिटी का कानून के प्रति आज्ञा करती मनशालिक में हमारे खुशहाली का बांधव है, हमेशा रहेगा और हमेशा रहेगा। चेस्टिटी हमेशा रहेगा। मैं ये गवाही देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से है।
Amen.
हम आप सबको आभार से मानते हैं जिन्होंने इस शाम हमको बातें करे हैं और ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सुंदर संगीत को प्रदान करे हैं। ब्रदरों को हम महापुरुषो सभा के बारे में याद दिलाते हैं। टैबरनेकल क्वायर प्रसारण द्वारा पूरे देश भर में कल सुबह 9:30 से 10:00 होगा। रविवार सुबह के सभा सम्मेलन तुरंत उसके बाद होगा। अब मेल्डन रसलम नेल्सन जो 12 देवदूतों को परिचारक है जो सुनकर प्रसन्न हो गए, उसके भाषण के बाद गायक मंडली सभा को खत्म करेगी मो होलीनेस गिव मी बेनेडिक्शन, फिर एल्डर जे डेविन कॉर्निश देंगी।
प्यारे भाई और बहनों, मैंने प्रधान थॉमस स्मॉलसन और दूसरे के साथ प्रशंसा किया जिन्होंने भविष्यवक्ता के लिए लायक प्रचारकों और ज्यादा मंत्र में होने के प्रस्ताव के जवाब दिया। अब एक अनमोल लहर उत्सुकता का प्रचार करने के लिए दुनिया भर में फैल रहे हैं। पिछले अक्टूबर को प्रधान मॉनसन की ऐतिहासिक प्रशंसा से हजारों एल्डर्स बहनें और शादीशुदा नियुक्त हुए सेवा करने के लिए और कई तैयार हो रहे हैं। अब लोग हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, हम इस सारे प्रचारों के साथ क्या करेंगे? जवाब सरल है, वो करेंगे जो प्रचार हमने हमेशा किया है, वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे। तुम में से ज्यादा जवान, ये पुरुष और महिला इस लहर को पकड़ेंगे जब तुम परखेंगे, जब तुम मिशन के नियुक्ति का लायक रहेंगे, कोशिश करोगे। तुम इसको सच्चाई और नेक के लहर की ओर देखोगे। तुम अपने अवसर को पूरी तरह से सच्चाई और नेक में शामिल हो फैल हुए देखोगे। जवान पुरुष और महिला, तुम्हारी शिक्षा हमेशा जरूरी है हमारे लिए, तुम्हारे लिए और परमेश्वर के लिए। जब यह हो सकता है, अगर तुम अपने मिशन के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहो, हम तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं कि मिशन पर जाने से पहले अर्जी कीजिए अपने इंस्टीट्यूशन को जो तुम्हारे पसंद का। कई इंस्टीट्यूशन आगे की पढ़ाई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए है 18 से 30 महीनों की देर को इजाज़त देती है। उस स्कूल पर स्तर की नियुक्ति के बाद एक संभावित प्रचार को स्कूल की शुरुआत करने के से पहले या तुम एल्डर्स और बहनों को निश्चित करेगा सेवा को चिंता बिना करने में कि कहाँ अपना आगे की पढ़ाई को करोगे। हम पढ़ाई वाले संतों के लिए बहुत आभारी है जो इस तरह के कार्य को संभवत करते हैं। तुम माता पिता, शिक्षाओं और दूसरों लहर को पकड़ो जब तुम उभरती हुई पीढ़ियों को लायक से प्रचार सेवा के लिए तैयार करो। तैयार रहो उनको जवाब देने के लिए जो तुमसे पूछे कि तुम क्यों जीवित हो। तैयार रहो आशा और खुशी करने के लिए। प्रचारकों से पूछे, वे तुम्हारी मदद करेगा और अगर तुम्हारी इच्छा हो तुम्हारे साथ होंगे जब प्रचारक तुम्हें सवाल के जवाब देंगे और पढ़ाएंगे। तुम युवक के तुम युवक को लहर को पकड़ को धार्मिक, शारीरिक और आने वाले प्रचारकों के आर्थिक तैयारी में मदद करो बढ़ने के लिए। या तुम्हारे लिए साधारण होता है पैसे को बचाने के लिए मिशन पर जाने के लिए। तुम शादीशुदा धनपतियों की जो बुजुर्ग हो समय के लिए योजना करो जब तुम अपने मिशन पर जा सकोगे। हम तुम्हारी सेवा के लिए बहुत आभारी रहेंगे। उस समय तक शायद तुम में से कोई अपने पैसे को प्रचारक कार्य को मदद करने में लगा सकते हो जनरल मिशनरी फंड में, जिसे प्रेसिडेंट मोशन ने बतलाया। चुने हुए बढ़ते नंबरों के पुरुष और उनकी प्यारी पत्नियां लहर को पकड़ो जब तुम्हें गिरजाघर के मिशन पर जाने का अवसर मिले। उस सेवा में वो प्रभाव डालेंगे। मिशन प्रेसिडेंट कल्याण की जिम्मेदारियों के चाबियों को रखते हैं सुरक्षित और अपने परिचारकों के सफलता के लिए। इस मिशन के स्टेक और जिला के अध्यक्ष से सलाह के बाद हर एक मिशन अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं खास स्टेक वोट और उनके शख्सों की सेवा के लिए। स्टेक अध्यक्ष और बिशप लहर को पकड़ते हैं जब वह ज्यादा समय को बिताकर आने वाले प्रचारकों से बातें करते हैं। ये प्रस्तुत के नेताओं जिम्मेदारी से चाबियां को रखते हैं। भाई और बहनों हर एक वोट काउंसिल लहर पर पकड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। मैं परिषद में वोट मिशन नेता होता हूँ। मैं खासकर तुम्हारे एक वोट मिशन नेताओं से बातें करना चाहता हूँ। तुम अपने बिशप से अपने वोट में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त होगा और तुम में से कुछ इतना सफल हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए मददगार है दूसरों के साथ। वोट मिशन वोट परिषद में तुम कम जरकर सदस्यों को जान सकते हो। परिवार जिसके कुछ ही सदस्य गिरजाघर के सदस्य हैं और पड़ोसियों जो सुषमाचार में दिलचस्पी दिखलाते हैं। तुम पूरे समय के प्रचार से हमेशा मिलते हो। तुम प्रचारकों से सहायता देते और मदद करते हो। कृपा उनके हर दिन के समय को समर्पित और मतलब के शिक्षण को आसरों से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे कार्य बहुत जरूरी है इस कार्य को सफलता करने के लिए। अगर तुम विश्वास और उत्साह से इस लहर को पकड़ते हो दूसरे भी करेंगे। तुम वोट मिशन नेता की तरह सदस्य और प्रचारकों के बीच के साथ जुड़ने वाले परमेश्वर के बच्चों को बचने वाले पवित्र कार्य में हमारे बच्चे हमारे छानबीन दोस्तों पड़ोसियों जो गिरजाघर के सदस्य नहीं हैं वो भी लहर को पकड़ सकते हैं। हम उन्हें प्रेरित करते हैं जो सभी कुछ उनके जीवन में अच्छा है और हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे ज़्यादा स्वीकार करें खास करके वो महान सच्चाई जो परमेश्वर को आनंद योजना से परिवार हमेशा के लिए साथ रह सकता है। सच्चाई हर एक का हर आश्चर्य है या इंसान ने में नहीं बनाया है यह प्रभु से आती है जिससे ने कहा वो अपने कार्य को उसके समय में करेगा। यह लहर दिव्य सूचना से प्रेरित होता है। 193 सालों पहले बना हुआ ये परमेश्वर था जो अपने प्यार पुत्र का परिचय करा रहा था और जो सुस्मित को बतला रहा था कि उसे सुनो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा उस सूचना ने जीसस स्मिथ को प्रभु यीशु मसीह के परिचय कराया। इन शब्दों ने उसके सुसमाचार को पुनर्स्थापित बतलाया। क्यों? क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। वह चाहता है कि उसके बच्चों उसे और यीशु मसीह को जाने जिन्हें उन्हें भेजा था और वह अपने बच्चों को अमरशीत और आनंद जीवन को देना चाहता है। इस महान कार्य के लिए हमारे प्रचार हैं पुनर्स्थापित को सिखलाते हैं। वो जानते हैं लगभग 2000 साल पहले प्रभु ने अपने गिरजाघर को बनाया उसके क्रूस पर चढ़ने के और उसके देवतों के मौत के बाद आसान ने गिरजाघर और सिद्धांत को बदल दिया। फिर धार्मिकता का अंधकार से पीढ़ियों के बाद और उसी तरह पहले के भविष्यवक्ताओं ने बतलाया था स्वर्ग के पिता और यीशु मसीह ने गिरजाघर उसके सिद्धांतों और उसके पृष्ठ के अधिकार को पुनर्स्थापित किया। पुनर्स्थापित ज्ञान और मुक्ति और उन्नत के खास सिद्धांतों और के कारण सभी इंसान को दोबारा प्राप्त हुआ है। अंत में वह आनंद हमको स्वीकार करता है कि हम अपने परिवार के साथ परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं पुनर्स्थापित पर बिना कोई खुशी से नहीं बात कर सकता हूँ। इस इतिहास इस सच्चाई बहुत ही असाधारण है, यह आश्चर्य है, यह असाधारण है, यह कितना आश्चर्य है कि स्वर्ग के दूत इस कार्य को अधिकार और शक्ति देने आए। हमारे आनंद पिता और उसी मसीह भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के पास कई बार आए, उनके मदर्स मार्गदर्शन पर दूसरे दूत भी आए और हर एक खास मकसद से आया। उदाहरण पर देवदूत मुरनाए मोर्मन की धर्मशास्त्र को दिखलाया, जॉन द बैप्टिस्ट ने अनुनयित प्रिस्टहुड को पुनर्स्थापित किया, पीटर जेम्स और जॉन ने मेलकिसेदेक प्रिस्टहुड को पुनर्स्थापित किया, मोसेस ने इसराइल को साथ इकट्ठा करने का चाबी दी, इलायज ने अब्राहम के ज्ञान के चाबियों को प्राप्त किया, इलाजा बढ़ने के अधिकार के चाबियों को पुनर्स्थापित किया। आगे पुनर्स्थापित ने ज्ञान को जोड़ा जो संतों के पास पहले थे। प्रभु ने नए धर्म शास्त्र को प्रदान किया, होली बाइबल्स के साथ मॉर्मन की धर्मशास्त्र को जोड़ा, यीशु मसीह की दूसरी गवाही या भविष्यवाणी और अमेरिका की पुराने लोगों के लिए पुनर्स्थापित जीवित प्रभु की देखरेख है, या परमेश्वर की महान योजना की खुशी बतलाता है, मुक्ति की योजना मॉर्मन की धर्मशास्त्र विलय से साथ बाइबल से साथ के तरह राजी है। दोनों पवित्र लिखा यीशु मसीह के सुसमाचार और उसके प्रेषित की जरूरत की बस सच्चाई बतलाता है। पुनर्स्थापित कई बिब्लिकल भविष्यवाणी को पूरा करता है। उदाहरण में ईसाई ने भविष्यवाणी किया कि प्रभु का भावना का निर्माण ऊंचा पड़ाव पर किया जाएगा। मार्मन पूर्वजों को पश्चिम अमेरिका के पहाड़ों पर जाने भी से बलिदान के एक महत्व कार्य है और विश्वास जिसमें भविष्यवक्ता पूरी होती है। आइज़ाया ने यह भी बतलाया था कि परमेश्वर आश्चर्यजनक और अचंभे का काम करूंगा जो अभी पूरी हो रही है हमारे प्रचारकों के बढ़ते हुए दल से। पुराने नियम के शिक्षक देवा से इसे लेकर पुनर्स्थापित हो चुका है, पढ़ना में ज्यादा दसवां इसे होकर पढ़ने वालों को आशीर्वाद मिलती है क्योंकि वो आज्ञाकारी है। मेलकिसेदेक स्थान को पुनर्स्थापित के संस्थान में समझाया गया है। भविष्यवाणी जो जोसेफ स्मिथ की लकड़ी मॉर्मन की धर्मशास्त्र और जूडा की लकड़ी बाइबल परमेश्वर के साथ में एक समान हो अब पूरी हो चुकी है। पुनर्स्थापित नए नियम के सिद्धांत जो भी समझे हैं या मेरे हुए लोगों के बपतिस्मा को अच्छी तरह से बतलाती है। हमारे मेरे मरे पूर्वजों को सिद्धांत को दुनिया भर के 141 मंदिरों में अच्छी तरह से किया जाता है। यहाँ पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए जो सुस्मस्तार के ज्ञान से बिना ही मर चुके हैं। जोन जो दृष्टि को प्रकट करने वाला है दूसरी देवदूत स्वर्ग के बीच था। उन्होंने कहा देवदूत मुरनाए और मार्मन की धर्मशास्त्र के मिशन को बतलाया। मार्मन की धर्मशास्त्र पुनर्स्थापित का मुख्य भाग है। ये लिखा हुआ बचाया और संस्कृत हुआ प्रभु की मार्गदर्शन से, यह अनुवाद परमेश्वर की शक्ति और उपहार से हुआ था। डॉक्टर एंड कवनेंट के धर्मशास्त्र में कई और प्रकट हुए कि क्या क्रिया है जो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को मिला था। उसके द्वारा हमें सिद्धांत को और पाने मिले जो हमें किसी और भविष्यवक्ता से मिला था। किस समय में यह होगा कि उसे सोचना हुआ इलिनोइनोवो में संतु के लिए, मैंने कभी तुम्हें यह नहीं बतलाया कि मैं सही हूँ, मगर यह कोई गलती नहीं करे प्रकट होने के कार्य में जो मैंने सिखलाया है। साथ में सदस्य और प्रचारक सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह और उसके सुसमाचार के बारे में सीखें। हर एक जो गंभीरता से जानकारी को व्यक्तिगत रूप से ढूंढेंगे सच्चाई और वादा किए लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चाई पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा होगा। मैं परमेश्वर और उसके यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ पुनर्स्थापित और उसके दुनिया भर में सच्चाई। शायद हम लहर को पकड़ सके, प्रभु के ज्ञान को आगे को पूरा करने में, सुसमाचार को ले जाने में, विश्वास के सभी रास्ते, जाति, विधि, भाषा बोलने वाले और लोगों तक। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, आमीन।
our holy and eternal Father in heaven.
We thank thee for thy love. हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो मुझे हमें मिला है और आपके पुत्र से और आपको धन्यवाद देते हैं कि भविष्यवक्ता द्वारा हमें संदेश मिलता है और आपके रास्ते पर चलने के लिए ज्ञान मिलता है कि जैसे हमें हमारे हृदय को हम खोलते हैं और आपके संदेश को सुनते हैं कि हम पश्चाताप करें और आपकी आज्ञाओं का पालन करें और जैसे कि हम फिर मिले और इस प्रार्थना को हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन.
This has been a broadcast of the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir of students from Brigham Young University. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.